कल हम लोगों ने श्रवण के संबंध में श्रीमद्भागवत से कुछ पाठ किया। ये श्रवण किसको कहते हैं? महत्पुरुषों से ही श्रवण होना चाहिए। साधारण आदमी जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, जिसको निष्ठा नहीं है, जिसको भक्ति में एकांतिकता नहीं है, उसे हजार श्रवण करने से भी कुछ लाभ नहीं। इसलिए महत्पुरुषों के से सुनना चाहिए। उसमें भी श्रवण करने में भी ये देखना चाहिए, जो जो कीर्तन कर रहे हैं महिमा, वो अपनी बात कर रहे हैं या किसी महत्पुरुषों की बातों को ही कह रहे हैं। यदि महत्पुरुषों की बातें हैं तो उससे फल होगा। यदि ऐसा नहीं हो तो उस श्रवण से अधिक लाभ है। इसलिए जहां भी श्रीमद्भागवत में कोई प्रसंग आया है, उन लोगों ने कहा कि हमारे गुरु जी, जैसे कि नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं, तो उन्होंने अपने गुरु की बात या पहले के नियमी इत्यादि की बातें ये सब लोग सुना। विशेष करके जितने भी श्रवण करने की चीजें हैं उनमें श्रीमद्भागवत मुख्य है। कोई भी आदमी कुछ कहता है उसे मिला करके देखना है कि भागवत से ये मिलता जुलता है कि नहीं, भागवत उसका अनुमोदन करते हैं कि नहीं। यदि अनुमोदन नहीं करते हैं तो दूध में पड़ी हुई मक्खी के भांति उस चीज को, नहीं तो उसमें कल्याण नहीं, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद्भागवत में जो बातें हैं वो आज नहीं करोड़ों करोड़ों युगों की बातें, करोड़ों करोड़ों युगों की बातें और उपलब्धियां इसमें दी गई, इसलिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसको कोई भी आज तक, ऐसा कोई भी ऋषि महर्षि आज तक हमारे देश में नहीं हुए जो कि उसको नहीं पाता, इसीलिए उसको माना। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण सबसे, भागवत में जो नाम के संबंध में जो विचार दिए गए हैं वो सबसे अधिक प्रमाण है। कीर्तन के संबंध में जो कुछ सबसे दिए गए हैं वो प्रमाण में है। स्मरण के संबंध में भागवत जो कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ। उसी प्रकार नवधा भक्ति के जितने भी लक्षण बतलाए गए हैं वो सब और शास्त्रों की अपेक्षा कोटि गुण। यहाँ तक कि दूसरे शास्त्र एक कह रहे हैं और भागवत एक कह रहे हैं तो हमको किसको मानना है? भागवत। वेद में भी उपनिषद में जो चीजें लिखी गई हैं किंतु भागवत में उसको दूसरे रूप में कह रहे हैं तो हमको भागवत ही बात, क्योंकि ये परीक्षित उसी रास्ते से महाजनो जीन गत आज के लिए जुग जुगा। इसलिए नए मत पातांतरों में अब नया करके फिर उसको देख करके इसमें क्या खूबियां हैं, क्या सुविधाएं हैं उसमें सारा जीवन का जीवन कितने कोटि कोटि जीवन। इसलिए हमारे देश में संत जमीनी का पूर्व मीमांसा, कपिल का आसन, पतंजलि का योग, ये सब भी हैं और भी बहुत से जो चरवाक का हुआ उन लोगों को किसी ने नहीं माना, बहुत कम थोड़े से लोगों ने, किंतु भागवत के पद को सभी लोग जितने रामानुज से लेकर के मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निम्बाद यहाँ तक कि शंकर आचार्य शंकर इत्यादि सभी लोग इसको मानने के लिए और आज तक जितने विद्वान लोग होंगे हो गए हैं भक्तों सभी इसको मानने के लिए मान। इसलिए श्रीमद् भागवत को प्रमाण चक्रवर्ती कहा। यदि कोई भी कोई बात कहता है श्रीमद् भागवत में उसको डिक्शनरी की भांति शब्दकोश की भांति उसमें देख लो, विचार कर लो, यदि है तो ठीक है, नहीं तो उसकी नहीं तो कल्याण जीवन का नहीं हो सकता है। इसलिए यहां कह रहे हैं श्रीधर स्वामी ने इसी श्लोक में अपनी टीका में उन्होंने कहा है साधु लोग नाम के वक्ता हैं। साधु लोग माने अनुभवी जो लोग हैं, जैसे नारद ऋषि, प्रहलाद हैं, स्वयंभू हैं, शंभु हैं, कपिल हैं, कुमार हैं, मनु हैं, भीष्म पितामह जी, इसके बाद में फिर हम लोग ले आएंगे रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, यमुनाचार्य, वल्लभाचार्य, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी आए, रूप सनातन इत्यादि, ये सब उसके बाद में फिर दूसरी कोटि आएगी, ये सब लोग तो इन लोगों को साधु, ये लोग सब प्रमाणिक हैं। तो ये लोग नाम के वक्ता हैं, हरिदास ठाकुर नाम के वक्ता हैं, तो ये लोग नाम के वक्ता हैं। ऐसे वक्ता या कीर्तन करने वाले यदि उपस्थित हों तो सुनो उनसे, सुनो, और यदि ना हो तो क्या करो, तब उनसे उपदेश करो। और यदि सुनने वाला कोई नहीं है तो क्या करो, अपने आप हरिनाम करो। तीन चीज याद रखो, यदि वैसे कोई उच्च कोटि के वक्ता हैं तो तुम लोग सुनो, बोलने की जरूरत नहीं है, और वैसे उपस्थित न हो तो श्रोता उपस्थित होने पर भगवान नाम वो करो तुम, और यदि कोई उपस्थित नहीं है तो एकाकी ही वैसे भी तो कैसे करेगा। उस समय में श्रीमद् भागवत जो कहते हैं
एवं
गत स्वपरिमेन कृत्या जातानुरागो जितचित्त उच्चै हसत्थो रोदति लौकि गायत् उन्मादवतलो नित्यतलो। एवं क्या है सुभद्राणी रथांगम
सुभद्राणी रथांगम
सेनमन सुभद्रा। ऐसे ही भगवान के कीर्तन में जो है जोर जोर से कीर्तन, ये सब कीर्तन क्योंकि एक महा समाधिग्रस्त व्यक्ति है, समाधि उसको लग गई, खूब समाधि और थोड़ा सा हरे कृष्ण कर दो या कोई जोर से कोई बात करने लगा उसकी समाधि भंग हो जाएगी। शंकराचार्य की समाधि लगी हुई थी खूब जोरों से और एक पानी भरने वाली ज्योति जा रही थी कुएं पर, तो उसके पैर के पैजेब बज उठे और समाधि भंग हो गई। जब भंग हो गई तो वो पानी पीने के लिए कुएं पर आए, राजे मुझे पानी पिला दे, तो वो उनके तरफ में वो देखने लगी युवती लड़की, शंकराचार्य भी उसके तरफ में देख रहे। तो शंकराचार्य ने कहा जी हमारे तरफ में किस लिए देख रही है, देखिए तुम्हारे जैसा एक हमारा नौकर था वो कुछ दिनों से आ नहीं रहा है पानी भरने के लिए, मुझे पानी भरने पड़े इसलिए तुम्हारे तरफ में देख रहे, तो तुमने क्या समझा। ऐसे समाधिग्रस्त लोगों की ऐसे ही वृंदावन में सबरी ऋषि 10,000 वर्ष तपस्या, बस एक पानी के कल्लोल से ही वो सब खत्म हो गए। पानी में कल्लोल आया, कहां से ये बज रहा है पानी, और बस। इसलिए विशेष करके कलयुग में समाधि चित्त को स्थिर करेंगे ये शास्त्रों में कहीं नहीं उनको गलत किया। और हरे कृष्ण खूब जोर से, जितनी तुम्हारी अंदर गंदी चीजें अरे खूब जोर से इधर उधर से चित्त में कामनाएं आ रही, जैसे समुद्र में एक लोटा डुबाओ या एक घड़ा डुबाओ और पानी निकालो, उस पानी को भरते हुए एक घड़ा पानी जो समुद्र से निकला है, एक नदी में हो, तालाब में, सरोवर में कहीं से, और वो पानी निकला उस पानी को भरते हुए कितना समय लगेगा, समझ रहे हैं। पानी जो एक घड़ा उसमें से एक लोटा या कोई भी अपने पात्र से उठाया उसको भरते हुए कोई समय लगता है, एक सेकंड में बराबर। ऐसे अपने चित्त से सब चीजों को हटाओ ना, मन को निर्मल बनाने की चेष्टा करने के लिए चित्त से जितनी प्रकार की कामनाएं वासनाएं हैं निकालो, थोड़ा सा निकाला उसको भरते हुए फिर कामनाएं वासनाएं, ये तो समुद्र ने अथाह समुद्र है कामनाएं कितना समय लगेगा, वो विषयों को आते हुए कामनाओं को आते हुए एक सेकंड नहीं आए लगेगा वो सकेगा, बल्कि और पहले की अपेक्षा अधिक आ जाएंगी। इसलिए इसके लिए प्रयास बुद्धिमान लोग ना करेंगे क्या कलयुग में, जब कीर्तन होकर के चित्त अपने आप समाप्त हरे कृष्ण जोर से करने लगे, अपने कानों में भी आवाज गूंजने लगी, हृदय में भी गूंजने लगी और सब जगत की चीजें भूल जाएगी और बस अपने आप समाप्त। इसी पथ को लेकर के हमारे जितने आज तक आचार्य हुए हैं अपने चित्त को चित्त, आज ही ने वो कलयुग के पहले भी सतयुग इत्यादि से पहले से ऐसे। इसलिए ये कह रहे हैं श्रवण करो, पहले श्रवण हो, श्रवण में भी ऐसा है अभी सुन रहे हैं चित्त सबका यहां लगा हुआ, अभी समाधि से हो देखो जैसे सब चिंताएं जितनी घर की बाहर की नौकरी की चाकरी की लड़की की शादी की सब चिंताएं यहां पत्थर पर, लोग जो कहते हैं कि अपने चित्त को स्थिर करके हमने समाधि लगा दी, शास्त्र ऐसा झूठ बात, तब तो कुछ ना कुछ उन्नति अपने चित्त की होती है किंतु ऐसा देखा नहीं जाता है। वो अपने साथ में छलना करके कहते हैं, अपने को ठगते हैं, इसलिए इस पर विश्वास नहीं। इसलिए शास्त्रों के बातों पर विश्वास करके हम लोगों को एकदम अजमाई हुई बात पक्की बात है। तो श्रवण के संबंध में हमने अब कीर्तन के संबंध में श्रवणम कीर्तन। कीर्तन का ये मत समझ लो, हमने कल ही बतलाया था कि केवल ये मृदंग और करताल हारमोनियम प्याला एसराग ढोलक तबला इन्हीं के स्वर से मिला करके गायन को कीर्तन करता है। इसका ये कीर्तन कीर्तन का तात्पर्य है कि भगवान के नाम रूप गुण और लीला इसकी उपलब्धि अपने हृदय में हो और उपलब्धि के बाद में दूसरों के निकट में उसका वर्णन करना एकदम दत्त चित्त होकर के, तो इसका नाम है। कल हमने उदाहरण दिया था बैया सखी कीर्तने व्यास जी कीर्तन का प्रकार है, सुनने वाले परीक्षित। किसी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं है, फरसा पानी पी लो, 7 दिन हो गए सुनते सुनते। मुझे प्रभु अब पानी का नाम मत ले और भोजन का, मैं तो ऐसी चीज पा रहा हूं, भोजन कर रहा हूं और अमृत का भी अमृत पान कर रहा हूं। अब मुझे पानी और ये सबसे चीजों से मुझे घृणा हो गई, हमको जरूरत है। यदि किसी को नाम में और भगवान की कथाओं में रुचि हो और बड़े लगन के साथ में वो सुन रहा है या कीर्तन कर रहा है, उस समय में यदि कोई उसके सामने पानी ले जाए ना पीने के लिए, तो उसे 20 के समान मार देगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि कीर्तन माने क्या, किसी महत्पुरुष से उसने सुना भगवान के नाम रूप गुण लीला। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने व्यास जी से इसका श्रवण किया, प्रहलाद महाराज जी ने अपने गुरु नारद जी से कितना 60,000 वर्ष तक श्रवण किया और उसकी उपलब्धि की और उनसे सभी जो कुछ उसका लक्षण है सब उनमें आया। और तब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी के सभा में गए और उस सभा में नारद जैसे सुखदेव गोस्वामी नारद व्यास पराशर वशिष्ठ गौतम हरि नौ जगेंद्र इत्यादि सब ऋषियों से 88,000 ऋषियों से भरा और गृहस्थ भक्त कितने ऊंचे लोग वहां पर, वशिष्ठ इत्यादि सभी लोग, गौतम इत्यादि थे। और उसमें उन्नंग धड़ंग 16 वर्षीय बालक को बैठा और उनका अनुमोदन रहा नारद जी का व्यास जी का और जितने भी प्राचीन ऋषि। किंतु एक बात है, ये इसे ये मत समझ लेना है कि उनसे भी ये श्रेष्ठ हो गए, ऐसा करने से अपराध हो जाएगा। कोई कोई अपने बच्चे को देखने के लिए भी बैठा देते हैं, ये कैसा ये पाठ कर रहा है, कैसा ये बोल रहा है, कैसा इसमें योग्यता, कैसी योग्यता है, इसलिए बैठा दिया। सुखदेव गोस्वामी जी कैसे योग्य थे, उनके मुख से सुनने से ही ये परीक्षित महाराज जी का ऐसा हुआ। अन्यथा दूसरा कोई साधारण आदमी वक्ता होता, आज के ये पाठ करने वाले जो सत्ता उसे कुछ नहीं, इसलिए योग्य व्यक्ति होने चाहिए। उसमें जरूरी नहीं है जैसे ये सब बाजा इत्यादि की जरूरत, तत्व को जान करके और श्रोताओं के चित्त को उन्नत बना देना है, उन्नत अपने समान लेवल में ले आएगा, इसलिए ऐसा वक्ता होना चाहिए। कहते हैं नाम संकीर्तन उच्च ही प्रशस्त है, प्रशस्त माने सब प्रकार से उचित, उच्च स्वर से होना। 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानसिक जप, एक होता है उपांशु जप और तीसरा होता है कीर्तन। मन ही मन जीवा के पिलाए बिना जो मंत्र के अक्षरों का ध्यान होता है उसको कहते हैं स्मरण, मन के द्वारा उसको मानसिक जप कहते हैं, उपांशु जप उसको कहते हैं। जबकि थोड़ा सा शब्द, मधुर शब्द निकले और केवल अपने आप सुन सके तो इसको उपांशु जप। और जब जीवा की स्फूर्ति होने से, चलने से, होठ चलते हैं और दूसरा भी सुन सकता है, दस भी सुन सकते हैं, हजारों सुन सकते हैं, लाखों सुन सकते हैं, तब ये और एक दूसरे से सभी क्रमशः 700 गुना अधिक श्रेष्ठ है। मानसिक स्मरण से उपांशु और उपांशु से सैकड़ों गुना, किंतु भगवान नाम के संग और दूसरों के मंत्र के जप में नहीं। भगवान नाम जिसमें व्याहृति और अंत में स्वाहा इत्यादि जो होता है वो न होना चाहिए। व्याहृति मैंने ह्रीं क्लीं श्लीं इत्यादि सब जितने हैं ये, और अंत में स्वाहा नमः न रहे तो इसको संबोधन वाचक भगवान नाम। कुछ लोग नाम करते समय में कुछ दूसरे शब्दों की उसकी पूर्ति के लिए कुछ लगा लेते हैं, विशेष करके गायक लोग, हारामा हो रामा,
रामा हो रामा हो,
यहां पर भी कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। हे राम हमारे ऊपर निकल, हे कृष्ण हमारे ऊपर निकल, और एक आदमी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है? ये जो है उपाधि शून्य सब प्रकाश के इसे पूर्ण निर्मल नाम है, इसलिए इसको श्रेष्ठ बनता है। इसलिए हरे कृष्ण में कोई भी दूसरा चीज नहीं है, केवल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, कुछ भी दूसरा चीज नहीं, एकदम शुद्ध। जैसे शुद्ध सोना है उसको अलंकृत करने के लिए मान लें कि कांच के कुछ खूब चमकीले कोई चीज है, चारों तरफ से बॉर्डर लगा दो तो देखने में तो अच्छा लगेगा, किंतु मूल्य कम गया ना? ठीक उसी प्रकार से शुद्ध नाम हरे कृष्ण राधे राधे गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद, हे नंद किशोर कृष्ण हासी यशोदा, ये भी वैसा किंतु ये प्रसिद्ध आ गया ना, इसलिए हरे कृष्ण वाला इसमें और कोई चीज ही नहीं। संसार में ये सब लोग नहीं जानते, अनुभूति भी नहीं, क्योंकि भागवत नहीं देते, परीक्षित कोई उपाय नहीं। विशेष करके इसमें एक चीज ये बतला रहे हैं जिसको हम लोगों के प्रभुपाद ने बतला रहे हैं, श्रीमद् भागवत ने बतला रहे। नारद जी का कोई लड़का होता है, लड़का होता तो नारद के समान पूज्य होगा कि नहीं? जैसे प्रहलाद महाराज जी का पुत्र हुआ कौन? विरोचन, विरोचन हुआ ना, तो उसको भी प्रहलाद महाराज जैसे ही पूज्य मान लिया जाए क्योंकि उनका लड़का है, तो वो भी जाएगा नरक में, विरोचन भी जाएंगे नरक में। ऐसा नहीं, क्वालिटी के ऊपर में सब कुछ, क्वांटिटी के ऊपर में कुछ भी निर्भर नहीं करता,
क्वालिटी के ऊपर
सब कुछ, क्वालिटी के ऊपर। इसलिए यदि किसी योग्य गोस्वामी का, महान का, ऋषि का वो लड़का योग्य है तो वो ठीक है, और नहीं तो केवल वंश में आने से ही ये नहीं, वहां पर वंश परंपरा नहीं चलता या गुरु परंपरा भी नहीं चलती जो उस गुरु का शिष्य है। यदि वो शिष्य वैसा हो ठीक ठीक, और उसमें वही गुण हो जो उनमें है तब तो है, नहीं तो फिर जहां इस गुण को देखो वहां से उसको बना, उसको श्रोता बना, कीर्तन का भेड़िया धसान मंत्र भगवान ने बुद्धि दी है। भेड़िया धसान जानता है? भेड़िया धसान मैंने एक गड़ेरिया बहुत से भेड़ों को लेकर जा रहा, एक बीच में एक छोटी सी छिछली नदी है, एक हाथ पानी था, तो भेड़ कोई पार ही ना हो, तो भेड़ वाले ने क्या किया, गरेड़िए ने एक भेड़ को उठाया और जोर से लेकर के फेंक दिया उस पार में, फेंक दिया, वो भीगती हुई है बैं बैं करती हुई, अब लाखों भेड़े जो थी उसके पीछे पीछे, कुछ डूबती कुछ उतराती कुछ तैरती, जैसे तैसे। भक्ति राज्य भजन राज्य साधन मार्ग ऐसा नहीं, क्रिया भाषा नहीं, शुद्ध अनुभूति के ऊपर ये सब चीजें होती है। इसलिए जैसा गुरु होगा और उस गुरु से शुद्ध रूप में यदि सुना जाए प्रैक्टिस किया जाए तब तो वो फल होगा, अन्यथा कल्पना करके ही किसी को मान लिया ऐसा नहीं। इसलिए वहां पर पहले ये बताया, ये श्रवण जो कराएगा जो कीर्तन करेगा उसमें क्या गुण होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा तृणादपि सुने चेन करोगि सह सुनना अमानिना मान देना कीर्तनीना सदा। भगवान का नाम कीर्तन कौन करेगा जिनमें ये चार गुण हो, तृण की अपेक्षा दीन ही, तृण में भी कुछ अभिमान होने का कारण है किंतु हमें तो वो भी नहीं, क्योंकि इतना चुथ जीव है जे अभी एक मिनट के बाद में क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं, अधिक खा लिया तो भी गड़बड़ी, नहीं खाया तो भी गड़बड़ी। अभी यहां से उस पार सड़क के उस पार में जाते हैं हम लोग, सोचते हैं कि लौटेंगे कि नहीं, कोई ठीक नहीं गारंटी नहीं, और ऐसा जीव अभिमान करता है जो मैं हूं। तीन में कुछ अभिमान है वो यथार्थ है किंतु हम लोगों का अभिमान है। सही सुनो होना चाहिए, जो भगवान नाम करेगा वो दुखों के ही आने पर बिल भी लाएगा, उसको दूर करने की चेष्टा करता रहेगा सारा जीवन, तो भगवान का भजन कब करेगा। इसलिए सही सुनो, आने दो उनका कर्तव्य आना और हमारा काम हमेशा करके भगवान का भजन करना, उसको ध्यान ही नहीं देना है, अन्य तो थोड़ा सा कुछ हुआ बस उधर ही में लग गए, दूर करने में ही सारा जीवन को दूर करते रहो, बस भगवान का भजन नहीं होगा। सही सुनो, और दूसरों को यथाजोग्य जान करके सम्मान देना और अपने लिए सम्मान देना, तब वो नाम धीरे धीरे ऊपर होकर के तब फिर या ये भगवान का भजन जो कुछ है इसके द्वारा। श्रीमद् भागवत में जो कहा गया जब पहले हम लोगों ने सुनो, लोग कहा हम लोगों ने नारद ऋषि अपने गुरु की बात सुनकर, अर्थात जब 5 वर्ष के बालक थे तो उस गांव में कुछ ऋषि महर्षि लोग आए जिसने सनक नंदन सनातन सनत कुमारी इत्यादि सुनाए, और वर्षा के चाल का वहीं पर एक कुटी निर्माण करके रह करके साधन भजन करने की चेष्टा की। उसी समय छोटा सा पंचवर्षीय बालक वो उनके पास में गया और प्रतिदिन उनकी कथाएं सुनता और बड़ी धीरे धीरे उनकी श्रद्धा हो गई, चित्त निर्मल होने लग गया और उनका प्रसाद भी जो पत्तों में लग जाता है, प्रसाद ले लूं ऐसे हाथ जोड़ कर लिया, मैं प्रसाद ले लूं ठीक है, दूसरा उतर लेना ही नहीं, फिर कोई दूसरा नहीं, किंतु उसके लिए बड़ा अच्छा छोटा सा बच्चा, प्रसाद उसके लिए जानबूझ करके रख देते थे, प्रसाद के लिए कुछ बनता ना तो कोई अच्छी चीज होती उस अपने नहीं खाते उस बच्चे के लिए रख देते और थोड़ा सा प्रसाद दे पाते, ऐसे पाने से कुछ दिनों में उसका चित्र एकदम मधुमिल। चौथे महीने जब ये लोग जब जाने लगे दूसरी जगह पे, ये वहां उत्कंठित होकर भगवान को कैसे पाऊंगा रोने लग गया, तो उसका रोते हुए देख करके इनका जी भर गया और उन्होंने कहा जैसा अच्छा एक मंत्र तुमको देते हैं, तुम किसी निर्जन स्थान में जा करके आराधना, ठीक मंत्र दे दिया उनको, भागवत में उन मंत्र का भी उल्लेख है दे दिया। इसके बाद में ये लोग चले गए, मैया छोड़ते नहीं, एक दिन सांप ने काट दिया वो मैया मर गई, मैया को छोड़ करके ऐसे ही मरी ही पड़ी हुई चले गए गंभीर जंगल में, घोर जंगल में चले गए और वहां पर एक सुंदर तालाब में पानी पिया और पी करके एक वृक्ष की छाया और जो गुरु जी ने मंत्र बतलाए थे उसी के अनुसार में, जैसे उन्होंने शिक्षा तीर्थी भजन करने के चित्त को एकांत करके और उसको कुछ दिनों के बाद में और चित्त निर्मल होने पर अपने आप जिस मंत्र को कर रहे वो मंत्र ही साक्षात भगवान होकर के नारायण उनके सामने आ गए। झलक देखी और झलक देखते ही और अंतर ध्यान झलक हो गई। अब तो ये विलाप करके एकदम जैसे किसी मणिहारे सर्प को वो मणि ले ली जाए और वो छटपट करता है, या मछली को पानी से निकालता है, पानी से निकाल दो मछली को जैसे छटपट करके मर जाती है, इनकी दशा ये आई। तो भगवान आकाशवाणी की, इस प्रारब्ध कर्मों से बने हुए शरीर में मैं नहीं आ सकता, अभी तुम्हारे अंदर में शरीर में कुछ कामनाएं हैं, जब ये संपूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगी ये शरीर छूट जाने के बाद में तुम्हारा जो परिकर शरीर है अंदर में भगवान के सेवा का वो प्रकटित होगा और तुम जहाँ कहीं भी रह करके भजन करो, तब तक तुम काल की प्रतीक्षा करो और तब तक भगवान नाम करते हुए सर्वत्र पृथ्वी में विचरण करो। संसार में की किसी भी वस्तु से आसक्ति मत रखना, ये मैं है और मेरा हूँ ये सब छोड़ करके स्वतंत्र गति से सर्वत्र विचरण करते हुए भगवान का नाम कीर्तन करना, लोगों को सुना। उस समय की ये बातें कर रहे हैं, उस समय उच्च स्वर से ये कीर्तन करते हुए भगवान का नाम कीर्तन। कुछ दिनों के बाद में और भी साधन से उनका चित्त निर्मल हो गया, जब तब जैसे तैसे उनकी समाधि लग जाती। कैसी समाधि? जिसको कहते हैं सहज समाधि। सहज समाधि में और इन समूह समाधि में बहुत कुछ अंतर है। वो समाधि कैसी सहज? जैसे गोपियों की समाधि, चल रही है, फिर रही है और संसार में कहां जा रही है पता नहीं, सब समय कृष्ण का ध्यान, ये सहज समाधि। महाप्रभु जी जैसे थे उनके जीवन में देखा जाता है सहज समाधि का। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी की सहज समाधि, ये सब है सहज समाधि। उनके अंदर में और संसार की कोई चीज ही तस्वीर ही नहीं आती, ये सहज समाधि, ये नाम के प्रभाव से होता है। कलयुग में हरिनाम सबसे प्रधान क्यों है, इसका कारण बताया है। भजन में, साधन में एक चीज की सबसे प्रमुखता है, किसी चीज के लिए आसन होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आधार होना चाहिए। हम गाय दूहते हैं तो कोई आधार पात्र नहीं रहेगा तो किसमें दूहेंगे, ऐसे ऐसे दूह लेने से तो नहीं हो जाएगा ना, कोई पात्र होना चाहिए। ऐसे जो भगवान का साधन भजन करते हैं उसमें पात्रता की आवश्यकता होती है, पात्र होना चाहिए। वो पात्र क्या है? कहते हैं कि कलयुग में अधिकांश लोग गरीब होंगे, दरिद्र होंगे, गरीब दरिद्र होंगे, बहुत चेष्टा करने पर भी जीविका का उपार्जन करना बड़ा भारी कठिन हो जाएगा और कुछ रहेगा भी तो सरकारें ऐसी आएंगी, राजा लोग ऐसे आएंगे जो मैंने डकैत और लुटेरे, लुटेरे लोग तो रात में किसी को मारपीट करके आमने सामने से ले जाएंगे और ये सब कुछ रहते हुए ऐसे टैक्स कर और ऐसे निर्धारण करके ले लेंगे, चूस लेंगे सब कुछ को। इसलिए अधिकांश लोग निर्धन गरीब, इसलिए कहते हैं जब तक किसी द्रव्य, जाति, गुण और कर्म के विषय में, अर्थात धन, रुपया, पैसा, इज्जत, पदवी, ये यदि रहेगी तो भगवान का भजन नहीं होगा, बड़ा कठिन है। इसलिए जन्म ऐश्वर्य सुखी भी एव मान मदात्मा न एव अर्हत अभिधातु वही त्वाम अकिंचन गोचर, हे अकिंचन गोचर, जिसको कुछ भी इस जगत में ये कहने का नहीं है ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये कहने का कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही आपको पा सकते। जैसा ये मेरा शरीर है बड़ा सुंदर हूं, मुझे धन है, मेरी बड़ी इज्जत है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं पुलिस सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में बड़ा बाबू हूं। सुपरिंटेंडेंट से जो लोग नहीं डरेंगे ना, उसे वो डरेंगे, क्योंकि वो तो इज्जतदार एक आदमी होता है, वो कुछ कर नहीं कर रहा, किंतु उसे और उनका गार्ड होगा ना, तो वो और अकड़ करके चलेगा। इसलिए कहते हैं ये सब मैं और मेरा का अभिमान जिसके अंदर में होगा वो भजन नहीं। जन्म उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य धन संपत्ति किसी प्रकार की नहीं चाहिए, ऐश्वर्य उच्च कुल में जन्म लेने का भाव, मैं बहुत उच्च कुल में, मैं जानता है कौन है, मैं त्रिवेदी हूं और मैं कांडकुब्ज त्रिवेदी हूं, मैं उच्च कुल का कायस्थ हूं, मैं अग्रवाल हूं मथुरा का, समझता नहीं है तो, बहुत उच्च वंश का हूं, वृंदावन का गोस्वामी हूं, जानता है तू तो? ये धौस तौस वहां पर कुछ नहीं, जहां पर ये सब कुछ नहीं है। जन्म ऐश्वर्य सूत, सूत माने विद्या, विशेष करके अल्प विद्या तो बड़ी भयंकर होती है, अल्प विद्या की जरूरत नहीं है, अधिक विद्या होने पर विद्या दानाति विनय अथवा पात्रता, तो उसे नम्रता हुई, जिस विद्या के द्वारा नम्रता नहीं हुई तो फिर वो गड़बड़ कर देगी। इसलिए भक्ति ही पराविद्या है, उसी से ही चित्त निर्मल शांत पवित्र और दीनता है। और जन्म सत्य सुत सी भी एध मान मद, इसके द्वारा मान मद बढ़ता है, वो क्या कोई साधन कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। इसलिए वो कह रहे हैं श्रुति पुराण प्रभृतियों के शास्त्रों में ऐसा सुना जाता है, ये श्रीमद भागवत के श्लोक में है, उसका अर्थ क्यों बतला है, ये श्लोक में है। कलयुग में स्वाभाविक रूप से लोगों को अभाव रहता है, बहुत अभाव, अर्थात अच्छी चीजों का अभाव, और उसी के जुटाने में सारे दिन उनका लग जाता है। विशेष करके लोग दरिद्र हो गए, इसीलिए कहा गया है ब्रह्मवैक पुराण के लिया है, उसमें कह रहे हैं कलयुग में तप तपस्या यह संभव नहीं, कलयुग में तपस्या संभव नहीं, जो ध्यान जो अथवा जो योग के जो प्रकार बनाए गए बतलाए गए हैं, जन नियम आसन प्राणायाम ध्यान ध्यान धारणा ध्रुवान स्मृति और समाधि, समाधि में भी दो प्रकार की निर्विकल्प संप्रज्ञात असंप्रज्ञात संप्रज्ञात और इसके बाद में सहज, ये जो सब है भाई, ये कलयुग में संभव पर नहीं, आप भावी जुटाने में लग रहे हैं और रोगों को निवारण नहीं है सब समय लग रहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई न कोई किसी को इतना वो मोटा होगा जब फैट पन कार होगा वो चल नहीं, किसी को अपने शरीर में कुछ रखते ही नहीं है वो इतना दुर्बल है। आजकल बच्चे जन्म लिया तभी ब्लड प्रेशर हो, किसी को हार्ट खराब हो या किसी को कुछ, इन रोगों से ही आदमी लग जाता है, ये सब क्या करेगा। किंतु एक मरीज भी मरा हुआ बिस्तर पर लेटा हुआ हा राज हा कृष्ण हा भगवान हे नारायण ये तो कर सकता है, टट्टी हो रही है उस समय जो करो तो जोग लगाओ, चित्त को समाधिस्थ करो, टट्टी हो रही है पतली लंबी पिचकारी निकल रही हो उसमें समाधि लगाओ तो ध्यान करो जप करो, ऐसे बैठ कर ऐसे बैठो तो सही कमर भी नहीं होगी, इसी बिछने पर तो लेटे हैं उस समय क्या करेंगे बतलाओ तो, जो तपस्या व्रत होम स्वाध्याय संयम वेद पाठ क्या करोगे, तीर्थ में जाना भी नहीं होगा। इसलिए जहां रहेंगे जैसे रहेंगे जिस रूप में रहेंगे मर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा, ये सब अनायास चीज को छोड़ करके जगत के लोग मुक्त होकर के दूसरी दूसरी चीजों पर दूर का ढोल सुहाओ, यहां पर कान फट रहा है और उनका ढोल बड़ा सुंदर लग रहा है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो ये सब चीजों को इनको छोड़ करके दूसरी संस्कृति के चीजों को हम सनातन धर्मी होकर के भी उनको ग्रहण करके चौपड़ते हैं, वो भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, घर वाला भी नहीं होता, बाहर वाला भी नहीं। गए दोनों से जहाँ खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम कर रहा हूँ, इधर से भी गए न कुत्ता न घर का न घाट का कहीं का। इसलिए गॉड बैक टू गॉड एंड बैक टू होम शुड बी पॉलिसी। इसलिए ये कारण बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, तुम लोग इनको धारण करने की चेष्टा करो, ऐसे ही अपने साधन भजन को ले जाओ, इससे सहज रूप में भगवान जैसे मिलेंगे, और नहीं तो भगवान कदापि नहीं मिल सकते। हम यही समझ नहीं सकेंगे हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करना है। बस एक कौवा ने, एक आदमी ने कहा कि कौवा तुम्हारा कान लेकर के उड़ गया, तो हम ये नहीं देखेंगे हमारा कान कोई ले गया कि नहीं, ऐसे नहीं करें, हैं, हमारा कान लेकर के चला गया, बस कहाँ गया कौवा, बस उसके पीछे दौड़ते 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 मैलों घूम रहे हैं। बहुत दिनों के बाद में किसी एक जानकार से भेंट हुई, कहा जी क्या हुआ भाई, तुम इतने घबराए किए हुए हो। भाई भाई बहुत घबराए हूँ, क्या बात है, क्या हमारा कान कौवा लेकर के चला। अरे तो देखो तो ये जरा कान तुम्हारा है कि नहीं, अपने पकड़ो तो। अरे हमारा तो कान ही नहीं है। ऐसे ही होता है, अनुभवी व्यक्तियों की बात को मान करके चलो। तो कह रहे हैं इसलिए कलयुग में जो ता विद्या यज्ञ ये क्रियाएं समूह जो हैं, विचक्षण देहधारी मनुष्य अपने को खूब विचक्षण, विचक्षण है किसको कहते हैं, विवेकशील, विवेकशील किसको कहते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है इस पर वो विवेचना कर सकता है, विवेक विचार कर सकता है। तो अपने को तो ये लोग समझेंगे विचक्षण, तो ये विवेकशील पुरुष के द्वारा अनुष्ठित ये जब भी हो तो भी ये पूर्णता लाभ नहीं कर सकते, क्योंकि वो साधन ही पूर्ण नहीं है, वो साधन पूर्ण नहीं, वो सब शरीर की क्रियाएं हैं, भगवान शरीर की कोई क्रिया नहीं है, इस चीज को समझो। शरीर की क्रियाओं से, मन की क्रियाओं से भगवान को नहीं पाते, तो जो नाम करता है वो भी तो तुम्हारी जीव की क्रिया है। अरे नहीं, वो जीव की क्रिया नहीं है, उसी के लिए कहा गया अतः कृष्णाम आदि न भवित ग्राह्य, वो तो भगवान अचिंत शक्तिशाली हैं, वो खुद अपने को रियलाइज करा देते हैं, वहां पर प्रकट करते हैं। जैसे नारद जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान अपने आप उनके हृदय में दर्शन, ध्रुव जी यही मथुरा के पास ही में मधुबन में तपस्या कर, तपस्या माने ये मत समझे शरीर क्या कोई कार्य कर रहे, भगवान नाम का चिंतन करते हुए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए। कैसे ध्यान किया, अरे नारद जी है ना अनुभव पुरुष, उन्होंने अपने हृदय का उनको दे दिया, इसलिए ऐसा संभव है। ऐसा शक्तिशाली पुरुष हो तो बस वो मंत्र जपने लगे, भगवान का ध्यान नहीं, एक बार सुन लिया जो वो ऐसे हैं, किंतु उनका नाम कीर्तन करते। कुछ दिनों के बाद में नारायण उनके सामने में, माने वही नाम ही जो जप रहे थे मंत्र, वही नारायण के रूप में प्रकटित हो गया। इसलिए भगवान की भक्ति ही एकमात्र पूर्ण चीज है, भक्ति माने उनकी कृपा बस पूर्ण चीज है साधन के, और सब पूर्ण साधन नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम अव केवल कलौ नास्ति कलौ नास्ति गति रंजता, और कोई गति नहीं है। इसलिए कहते हैं अतः कलयुग में स्वभावतः ही अति दरिद्र जो जीव हैं अधिकांश, कितने लोग धनी हैं बंगाल में हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े पहले लोग जमींदार होते थे, वो जमींदार लोग क्यों धनी होते, अब बाकी समस्त देश गरीब, केवल कुली कबाड़ी जैसा काम करता खेतों में उनके। कुछ दिनों के बाद में ऐसा समय का धक्का लगा, जमींदारी प्रथा गई उलट, और उसके बदले में एक और सामंतवाद दिया, जिसका लाल झंडा बस वही उसका मालिक, और कोई भी मालिक नहीं, मालिक विहीन हो गया, एकदम सब कुछ उलट गया। लाल झंडा वाले जिनका दल है बस माइटी जराइट हो गया, वो सब लोग ताकते रहे। अब कितने लोग धनी हो गए, धनी वही बस, अब एक वही दल वाले बस धनी और बाकी सब। इसलिए कहीं भी भारतवर्ष में देखो या और भी जगहों में अधिकांश लोग गए। इसलिए वो कहते हैं स्वाभाविक ही अति दरिद्र जीवन के बीच में कीर्तनार्थ भक्ति कुछ तो है नहीं, क्या करेंगे। बस वो नामदेव का वो था ना, वो ले लिया वो क्या है, बस मजीरा नहीं वो काट का कट कटताली, उसमें बहुत से लगे रहते हैं मजीरे, बस नित्य करते हुए तन्मय होकर के। महाप्रभु जी ने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है, बस हाथ में ताली दे करके बस
हाथ में ताली दिया हो सिखाने,
उसकी भी जरूरत नहीं है। जैसा तैसा हो भगवान को बड़े प्रेम के साथ में पुकारो, यही सबसे बड़ा काम। तब साधारण लोगों को नियम के अनुसार में रह करके जैसा वो बतलाते हैं एक्सपर्ट इस विषय में, उस रूप में साधारण रूप में आरंभ करना चाहिए। इसी तरह से अन्यासी ये जो पूर्व युगों में जो तपस्या से योग से और जो उपायों से जो उनको फल मिलता था, कलयुग में बिना पैसे की ही बिना शारीरिक शक्ति के बिना योग समाधि इत्यादि के बस भगवान नाम के द्वारा सहज रूप में वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए कलयुग की इतना महिमा बतलाई गई है।